Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bahar nikala ja raha hai usse. Jaise karapatya agni se avani agni ko bahar nikala jata hai na. Aise aapke sharir ke andar pravisht hua vayu वो हो गया अपान और बाहर निकल रहा है वह प्राण. तो अंदर की वायु से ही प्राण को बाहर ले जाया जा रहा है. तो गर्भपत्य से आवनीय को ले जाया जाता है और यहां अपान से प्राण को ले जाया जा रहा है. इसलिए गर्भपत्य से आवनीय ले जाया जाता है, इसलिए हो गया गर्भपत्य स्थानीय अपान और आवनीय स्थानीय प्राण. प्राण को आवनीय कहा जाएगा. अपान से ऐसा प्रतीत होता है कि अपान से प्राण का प्रणयन हो रहा है, ले जाया जा रहा है उसे बाहर अंदर की वायु के वायु से ही. तो ये दोनों में समानता हो गई कि अपान से प्राण वृत्ति को बाहर ले जाया जा रहा है ऐसा प्रतीत होता है और गर्भपत्य से आवनीय अग्नि को प्रत्यक्ष में अग्निहोत्री ले जाता है. ये दोनों में समानता होने के कारण अपान को कहा गया गर्भपत्य अग्नि और प्राण को कहा जाता है आह्वनीय अग्नि. और आह्वनीय प्राण ये लिखा है ना, तो ये दो अग्नियां हो गई, एक गर्भपत्य अग्नि और एक आह्वनीय अग्नि. एक तीसरा अग्नि भी होता है, तीसरा अग्नि होता है दक्षिणाग्नि. दक्षिणाग्नि का एक दूसरा नाम है, जैसे गर्भपत्य का एक विशेषण हुआ प्रणयन, ऐसे दक्षिणाग्नि का एक नाम है अन्वाहार्य पचन. अन्वाहार्य पचन ये गर्भपत्य अग्नि का ही नाम है. ये गर्भपत्य नहीं, दक्षिणाग्नि का. तो ये अन्वाहार्य पचन अग्नि कौन है जो अग्निहोत्री के यहां रहता है, तीसरा अग्नि? तो उसे कह रहे हैं व्यानो अन्वाहार्य पचन. ये बीच में वाक्य है, व्यानो अन्वाहार्य पचन का. अन्वाहार्य पचन नाम का जो अग्नि है तीसरा, उसे व्यान वृत्ति को समझना. ये जो व्यान वृत्ति है, व्यान को अन्वाहार्य पचन क्यों कहेंगे यानी दक्षिणाग्नि क्यों कहेंगे? नहीं, तो जो अन्वाहार्य पचन अग्नि होता है अग्निहोत्री के यहां, वह इन दो अग्नि की अपेक्षा दक्षिण दिशा में स्थित होता है. दक्षिण दिशा से संबंध होता है अन्वाहार्य पचन अग्नि का, इसलिए उसे दक्षिणाग्नि कहा जाता है. और ऐसे ये जो व्यान है ना, इसका भी दक्षिण दिशा से संबंध है. दक्षिण दिशा से कैसे संबंध है? तो एक छांदोग्य उपनिषद में हार्द ब्रह्म की उपासना आती है. हार्द ब्रह्म यानी हृदयस्थ ब्रह्म, और उसकी उपाधि बताई गई है गायत्री. उसे गायत्र उपाधिक ब्रह्म भी कहा जाता है, गायत्र ब्रह्म या हार्द ब्रह्म. और उस हार्द ब्रह्म को हृदय में स्थित बताया गया, हृदय को उस हार्द ब्रह्म का महल के तरह महल बताया गया है. कमलाकार एक इस शरीर रूपी पूर के अंदर महल बना हुआ है और उस महल में रहता है ब्रह्म रूपी राजा. और राजा के फिर अलग अलग द्वारपाल होते हैं, महल के भी अलग अलग द्वार होते हैं ना. तो ये हृदय रूपी जो महल है उसके द्वार कितने हैं? पांच. पांच द्वार वाला ये महल है. और उसमें अलग अलग द्वार में एक ही द्वारपाल नहीं होता है, वो रहते हैं अलग अलग द्वार में पांच द्वारपाल। वो पांच द्वारपाल के तरह द्वारपाल हैं ये पांच प्राण, ये बताया गया। उसमें से दक्ष हृदय के जो पांच द्वार हैं उनमें से दक्षिण दिशा में जो द्वार है उस दक्षिण द्वारस्थ द्वारपाल माना गया इन पांच प्राणों में से व्यान को। व्यान वो दक्षिण दिशा के ओर हृदय के द्वार का द्वारपाल है। इस प्रकार इस व्यान की व्यान का संबंध दक्षिण दिशा से हुआ, वो कहा यहां पर नहीं बताया गया, वो बताया गया छांदोग्य उपनिषद में गायत्र उपाधिक ब्रह्म की उपासना के प्रकरण में। ब्रह्म के द्वारपाल ये पांच प्राण हैं, उसमें से दक्षिण द्वार का द्वारपाल व्यान है। इस प्रकार ये दक्षिण दिशा के साथ व्यान का संबंध हुआ और अग्नि ये जो अनिवार्य पचन अग्नि होता है ये भी दक्षिण दिशा में स्थित अग्निहोत्री के यहां होता है, इसलिए अनिवार्य पचन अग्नि भी दक्षिण दिक संबंधित है, तो व्यान भी दक्षिण दिशा संबंधित होने से दक्षिण दिशा संबंध रूप समानता इन दोनों की हो गई, दक्षिण दिक सामान्य, इसलिए इसे कहा गया व्यानो अनिवार्य पचन। व्यान नाम का जो प्राण है उसे दक्षिणाग्नि समझना, ऐसी भावना करना है, मानना है। यद्यपि ये ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, त्वम पदार्थ शोधन हो रहा है और उसमें कर्मकांड को क्यों लाया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि विद्वान जो होता है, ज्ञानी जो होता है, उसे ये नहीं समझना कि बिल्कुल निकम्मा होता है, कुछ करता ही नहीं है। ये बताया जा रहा है कि ज्ञानी का सोते समय भी अग्निहोत्र होता रहता है, तो जिसका सोते समय भी अग्निहोत्र हो रहा है उपाधि से, लेकिन उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं है, उसकी उपाधियां निरंतर कर्म में लगी रहती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान भी अवतार लेते हैं तो कितना सब करते हैं, यदि हे हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि मैं कर्म न करूं तो मेरे जो अनुयायी हैं वो सोचेंगे कि भगवान ही नहीं करते हैं तो हमें भी करने की क्या जरूरत है, और लेकिन सामने वाले को तो कर्म रूप साधन से चित्त की शुद्धि रूप जो प्रयोजन है वह प्राप्त करना है, या तो संसार में अभ्युदय प्राप्त करना है। इसलिए कर्म का प्रयोजन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके अनुयायियों के जीवन में आवश्यक है, वो कर्म का प्रयोजन है लौकिक अभ्युदय या तो चित्त की शुद्धि, और ये दो प्रकार का कर्म फल जिनके जीवन में नहीं है उनके लिए तो कर्म करना जरूरी ही है। इसलिए भगवान ने कहा कि न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोसेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जो कर्माधिकारी हैं उनके बुद्धि में भेद उत्पन्न न करें, उनके बुद्धि में जिससे संशय उत्पन्न हो, कन्फ्यूजन हो कि कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा जिससे संशय उत्पन्न हो ये न करे कर्माधिकारी की बुद्धि में, तो क्या करे फिर? तो जिसके जीवन में कर्म की आवश्यकता नहीं है, कर्म का प्रयोजन जो चित्त की शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य है, ये हो गया है और ब्रह्म साक्षात्कार भी हो गया है जिनको आचार्य कुटी के महापुरुषों को। लेकिन उनको भी चाहिए कि जिनको चित्त शुद्धि की अपेक्षा है, उत्कर्ष की अपेक्षा है, उनके सामने जिससे कर्म का महत्व स्थापित हो ऐसा ही प्रतिपादन करें और स्वयं भी आचरण करके वैसा ही सिखा दें। क्योंकि मंच पर बैठ करके जो बोलते हैं वक्ता, तो श्रोता भी जो हमेशा के होते हैं वो समझते हैं कि ये तो बोलने की बातें हैं, लेकिन जीवन सामने वाले का देखते हैं कि कैसा है। जो बोलते हैं मंच पर बैठ करके वैसा ही जीते हैं या जीना कुछ अलग है, बोलना कुछ अलग है। तो जिसका मंच पर बैठ करके बोलना मात्र है और जीना कुछ और है, उसकी बातों को उतना प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, प्रभाव नहीं पड़ता है। और आचरण देखते हैं, जो बोलते हैं वैसा ही करते हैं तो उसका प्रभाव होता है। इसलिए कहते हैं जोसेत सर्वकर्माणि विद्वान। तो ज्ञानी को चाहिए कि सारे कर्म को, कर्मरूपी साधनों को जुष्ट करें, यानी पुष्ट करें, जुषी प्रीति सेवन हो, जिससे सामने वाले की उस कर्म में प्रीति उत्पन्न हो, ऐसा करें। वो कैसे होगी? तो कहते विद्वान युक्त समाचरण, स्वयं आचरण कर लें। अपना प्रयोजन न होने पर भी, जैसे करने से कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं होता, ऐसे करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो न करने की अपेक्षा करने से लोगों का लाभ होता है, यदि शिक्षा मिलती है यदि, तो सामने वाले का तो काफी लाभ हो रहा है ना। इसलिए न करने की अपेक्षा विद्वान कर्म करता रहे और करके दिखाए कि देखो ये सामने वाले भी कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। ये नहीं कि वेदांत कहता है कि आत्मा निष्क्रिय है, अकर्ता है, अभोक्ता है, ये सुन है तो अंतिम स्थिति वही, लेकिन हमारी स्थिति अंतकरण की क्या है, हम किस योग्यता के हैं, वह योग्यता देख करके उस योग्यता के अनुसार साधन को महत्व जरूर देना चाहिए। इसलिए अलग अलग कोटि के साधक विद्वान के सामने होते हैं और विद्वान सब साधनों को स्वयं करके दिखा दें कि ऐसे ऐसे वो साधन होते हैं, तो फिर अपनी योग्यता के साधन में सामने वाले की आस्था होती है। ये भगवान की आज्ञा है गीता में। तो इसलिए विद्वान भी अकर्मी नहीं होता, बिल्कुल कर्म छोड़ करके आलसी बन करके नहीं रहता, अपितु नींद में भी उसका अग्निहोत्र होता जा रहा है। ऐसा विद्वान की स्तुति करने के लिए यहां पर एक कर्म के जैसा यहां पर बताया जा रहा है कि अग्निहोत्री जैसा अग्निहोत्र कर्म करता है, ऐसे विद्वान जो नींद में प्राण का व्यापार उसका चलता रहता है, विद्वान नींद में है, वह उसका केवल प्राण व्यापार मात्र नहीं है अपितु अग्निहोत्र हो रहा है। जब नींद में भी अग्निहोत्र हो रहा है तो जगने पर तो वह शास्त्रीय ही आचरण जरूर करेगा ही करेगा, अशास्त्रीय आचरण विद्वान का नहीं होता है। क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी तो मान लिया ज्ञान हो गया किसी को साक्षात्कारात्मक, तो ज्ञानोत्तर काल में जो प्रारब्ध शेष है उस प्रारब्ध से फिर उपाधि में जो व्यापार होना होता है वो बाधित अनुवृत्ति से होता है संस्कार के अनुसार। जैसे उसके चित्त में संस्कार उद्बोधित है वैसे कर्म होते हैं, उसे स्वभाव कहा जाता है, स्वभाव के अनुसार होता है। और ज्ञान किस स्वभाव वाले को होता है? अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा तामसी स्वभाव वाले को, जिसका आसुरी संपत्ति जिसके अंदर है, आसुरी संस्कार जिसके अंदर है उसको होगा, या दैवी संस्कार जिसके अंदर होगा उसको होगा। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि से बताए गए जो दैवी संस्कार है वो जिसके चित्त में है अनेकों जन्मों से अर्जित, उसी से वही स्वभाव जिसका बन गया है और उसी से ज्ञान होगा, उसी को ज्ञान होगा। और ज्ञान के बाद में जो संस्कार पहले था ज्ञान के, उसी संस्कार के अनुसार प्रवृत्ति होती है विद्वान के कार्यकरण संघात की। वह प्रवृत्ति होगी किससे? दैवी संस्कार के अनुसार ही। और दैवी संस्कार है शास्त्रीय संस्कार, इसलिए शास्त्रीय प्रवृत्ति ही विद्वान की होती है, अशास्त्रीय प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान के विद्वत्ता की स्तुति के लिए, ज्ञान की स्तुति के लिए ये बताया जा रहा है प्राणों का व्यापार भी अग्निहोत्र के तरह अग्निहोत्र है। तो अग्निहोत्र में तो तीन अग्नियां होती हैं, फिर एक ऋत्विक होता है, एक यजमान होता है, और अग्निहोत्र का फल होता है, और अग्निहोत्र का फल प्राप्त कराने वाला होता है, वो कौन है सब? तो ये रूपक बनाया जा रहा है। तो यहां तृतीय कंडिका में तीन अग्नियों के तरह तीन अग्नियां बताई गई। एक तो अग्नि बताया गया प्राण को गार्हपत्य, अपान को गार्हपत्य अग्नि, और व्यान को दक्षिणाग्नि, प्राण को आह्वनीय अग्नि के तरह आह्वनीय अग्नि। और ये जो बाकी दो प्राण की वृत्तियां बची हैं, एक समान और दूसरी व्यान उदान, तो समान को बताया जा रहा है अग्निहोत्र की दो आहुतियां होती हैं, सुबह दो शाम को दो। तो ये जो दो आहुतियां हैं, ऐसे हम जो श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं, तो लेना हुआ श्वास और छोड़ना हुआ उच्छ्वास, तो श्वासोश्वास ये भी दो है ना, तो दो हो गए श्वासोश्वास और दो हो गई आहुतियां, दोनों में भी द्वित्व संख्या समान है, इसलिए द्वित्व संख्या रूप समानता को लेकर के बताया जा रहा है कि ये जो श्वासोश्वास है यह आपके अग्निहोत्र में डाली जाने वाली आहुति के तरह दो आहुतियां हैं श्वासोश्वास, वो आहवनीय अग्नि में आहुति का प्रक्षेप किया जाता है। तो प्राण रूपी आहवनीय अग्नि में जो श्वासोश्वास रूप दो आहुतियां डाली जाएगी, ये आहुति की तरह आहुतियां हुई, और इन आहुति को जिसमें प्रक्षिप्त करना है आहवनीय अग्नि में, वहां तक ठीक से ले जाने वाला होना चाहिए ना, वो ले जाता है कौन? समान। इसलिए चतुर्थ कंडिका के प्रथम वाक्य में बताया जाएगा कि अग्निहोत्र की दो आहुतियों को ठीक से ये समान वायु पहुंचाता है, इसलिए यह समान वायु अग्निहोत्र का जो होता है वो होता की तरह है। बाह्य अग्निहोत्र में होता आवनीय अग्नि में आहुतियां डालता है, और यहां पर ये समान नाम का जो वायु है ये श्वासोश्वास रूपी आहुतियों को आवनीय अग्नि रूप प्राण में डाल रहा है, ये माना जाएगा। इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। हरिओम।